मेरे प्रिय युवा मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 27 नवंबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने एक नौजवान साथी भगीरथ कुमार का जो भोलसर गांव के हैं, जिला भागलपुर बिहार से हैं, जिन्होंने एकेडमी की 7 से 21 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना पंजीयन कराया है। फ्रेंड्स, आज शुक्रवार है और शुक्रवार को मैं कुछ सूचनाएं नियमित तौर पर आप सबको देता हूं और सूचना यह है कि जो डेली ऑडियो लेक्चर है वो शनिवार और रविवार को नहीं आता है, लेकिन इस बार सोमवार को भी डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा क्योंकि आप जानते हैं कि सोमवार को भी गजेटेड हॉलीडे है और शनिवार को और रविवार को तो हॉलीडे होता ही है, लेकिन प्रेस क्लिपिंग्स आपको शनिवार को एज इट इज मिलेंगी और सोमवार को भी प्रेस क्लिपिंग्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। हाँ, योजना और कुरुक्षेत्र के जो आपको दो दो आर्टिकल हिंदी और इंग्लिश के दिए जाते हैं वो शनिवार को बकायदे कल प्राप्त होंगे और साथ ही साथ कल आपको एक साप्ताहिक प्रश्न दिया जाएगा जो मेन एग्जामिनेशन के प्रैक्टिस के लिए होता है और उसका पैटर्न भी लगभग वही होता है। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे संविधान की उद्देशिका इसके बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। आज के अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि जो किसानों का आंदोलन है वो धीरे धीरे अलग अलग स्थानों पर होते होते अब राजधानी पहुंच गया है। राजधानी यानी कि देश का सर्वोत्तम स्थान, सर्व प्रमुख स्थान राजनीतिक दृष्टि से, नीति निर्धारण की दृष्टि से, क्योंकि वहां हमारी संसद है। आपको मालूम है कि आंदोलन क्यों हो रहा है। भारत सरकार ने जो अभी 3 विधेयक पारित किए हैं, जो तीन कानून बनाए हैं खासकर किसानों को लेकर के, कृषि उत्पाद को लेकर के, उनके विरोध में ये किसान खड़े हुए हैं क्योंकि उनके कुछ एप्रीहेंशंस हैं, उनकी कुछ आशंकाएं हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो 3 कानून बनाए गए हैं इनसे जो बड़े बड़े कारपोरेट घराने हैं, जो उद्योगपति हैं, उनको लाभ होगा और किसान एक प्रकार से उनके गुलाम हो जाएंगे। जो न्यूनतम रेट होते हैं उत्पादों के वो उसकी प्रणाली खत्म हो जाएगी। इस तरीके से उनके दिमाग में कई एप्रीहेंशन हैं और इस बीच में हम लोगों ने इस पर काफ़ी बातें भी की हैं और आपको ये भी मालूम है कि जैसे पंजाब राज्य है उसने बकायदे अपने अलग से कानून बनाए हैं किसानों के लिए। दूसरे राज्य भी ऐसा कह रहे हैं और बकायदे वो तैयारी में है कि वो कानून बनाए। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 स्थितियाँ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सामने हैं। पहली स्थिति तो यह कि यूनियन ने एक कानून बना दिया लेकिन राज्य उसे ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, राज्य भी अपने कानून बना रहे हैं। तो ये एक जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, जो संघीय स्वरूप है हमारी राजनीति का, उसमें आप देख रहे हैं कि एक दरार सी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, पहली बात। दूसरी बात कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उनके दिमाग में जो एप्रीहेंशंस हैं, सरकार इसे किस तरीके से अब एड्रेस करती है, इसका क्या समाधान ढूंढती है, ये अभी देखना होगा। आंदोलन के बाद वो हमारे सामने आएगा। तो इसीलिए ये जो आंदोलन है इस पर आपकी बड़ी सतर्क नजर होनी चाहिए क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, मेंस में, आप देखेंगे कि कृषि या किसान, इन सबको लेकर के लगभग 2-3 प्रश्न तो पूछ ही लिए जाते हैं और 20 में से 3 प्रश्न बहुत मायने रखते हैं। तो आप पूरी सतर्कता से वाच कीजिएगा क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं खासकर ऐसे विषयों पर, तो आप देखेंगे कि वो बहुत ही टेक्निकल किस्म के नहीं होते, बहुत ही तथ्यात्मक किस्म के नहीं होते, वो नेचर में बहुत ही जनरल किस्म के होते हैं, बहुत ही सामान्य किस्म के आपको दिखाई देंगे, लेकिन उन्हें लिखना उतना सामान्य नहीं होता है। तभी लिख पाएंगे जबकि आपकी नजर इन सारी घटनाओं पर बहुत अच्छे तरीके से हो। दोस्तों, कल संविधान दिवस के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर से देश के सामने अपने संबोधन में कहा, एक देश एक चुनाव। कुछ साल पहले ये मुद्दा उठा था, एक देश एक चुनाव। इसके बारे में मैं कोई अभी बहुत विस्तार से बातें करने नहीं जा रहा हूं क्योंकि अपने पास जो दूसरा विषय है वो काफी महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक फिर से इमर्ज हो रहा है। इसलिए इमर्ज हो रहा है क्योंकि ये हमारी जो लोकतांत्रिक प्रणाली है वो चुनाव पर आधारित है और अभी आप देख रहे हैं कि हमारे जो चुनाव हो रहे हैं, अभी कुछ समय पहले बिहार के चुनाव हुए, इससे पहले कुछ और चुनाव हो रहे थे, कुछ समय के बाद पता लगा कि और राज्यों के चुनाव होंगे, कहीं पंचायतों के चुनाव हो रहे होते हैं, कहीं उपचुनाव हो रहे होते हैं, तो हर समय आपको कहीं ना कहीं चुनाव की ध्वनि सुनाई पड़ती रहती होगी। ऐसे में हो क्या रहा है? उन्होंने एक दो बातें प्रधानमंत्री जी ने जो अपने संबोधन में कही है, पहला तो यह है कि जब चुनाव होने होते हैं तो पूरे देश का जो ध्यान है वो चुनाव की तरफ चला जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि जहां चुनाव हो रहे हैं वहां आचार संहिता लग जाती है, और आचार संहिता लगने के कारण वहां जो विकास के कार्य होने चाहिए वो रुक जाते हैं, क्योंकि पक्का आपको उन्हें रोकना पड़ेगा, आप नया कुछ भी नहीं कर सकते, और पूरी जो मशीनरी है वो चुनाव में लग जाती है, तो इस तरीके से जो विकास की गति है वो थम जाती है। और फिर अलग अलग समय में चुनाव होने में अलग राज्य के अलग हो रहे हैं, केंद्र के अलग हो रहे हैं, तो आप सोच करके देखिए कि देश का कितना धन व्यय हो रहा है, समय व्यय हो रहा है, उसमें मशीनरी लगी हुई है। तो इस तरह से उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, और सच पूछे तो विधि आयोग वगैरह अब इस तरह के रिकमेंडेशन भी करने लगे हैं कि हाँ बेहतर होगा कि एक देश एक चुनाव हो। हालांकि उन्होंने अपने रीजंस अलग दिए हैं, जो अविश्वास के प्रस्ताव पेश किए जाते हैं फिर सरकार गिर जाती है, इन सबको आधार बना करके उन्होंने कहा कि बेहतर हो कि एक बार चुनाव हो और इसके लिए फिर सरकार की स्थिरता निर्धारित हो जाए। खैर वो एक अलग बिंदु है, उस पर हम लोग फिर बाद में कभी बातें करेंगे। तो फिलहाल डेफिनेटली यह एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए प्रस्तुत हमारे प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है, इसकी भी आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। दोस्तों आज के अखबारों में मैंने पढ़ा, एक तथ्य के रूप में मैं आपको बता रहा हूं, ये इसका एग्जामिनेशन से कोई सीधा बहुत ज्यादा संबंध नहीं है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तथ्य यह है कि कल हम लोगों ने एक महान फुटबॉल खिलाड़ी के बारे में बात की थी जिनका निधन हो गया, माराडोना अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे। अब आप देखें कि वहां की सरकार ने उनके निधन पर 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। एक खिलाड़ी के निधन पर 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, इससे ये पता लगता है कि ये जो देश हैं अपने खिलाड़ियों को कितना महत्व देते हैं, कितना सम्मान देते हैं। और है ऐसा, मतलब जो लैटिन अमेरिकी देश है, अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका में आता है, मतलब जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसके देश अक्सर लैटिन अमेरिका अमेरिकन देश कहलाते हैं। मैं अर्जेंटीना तो नहीं गया हूं, मैं ब्राजील तो नहीं गया हूं, लेकिन मैं चिली गया हूं। दोस्तों एयरपोर्ट से उतर करके जब हम लोग चिली की राजधानी में जा रहे थे तो लगभग उसका फासला करीब 15-20 किलोमीटर का रहा होगा। आज भी वो दृश्य मुझे याद आता है, 1995-96 की बात है कि जब हम लोग जा रहे थे तो चौड़ी सड़कें हैं और उसके लेफ्ट साइड में फुटबॉल के मैदान हैं, केवल फुटबॉल के मैदान, एक मैदान खत्म, फिर दूसरा मैदान, फिर तीसरा मैदान, फिर चौथा मैदान, मैदान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और दाहिने साइड में अंगूर के बाग थे, अंगूर के गार्डन थे, और बड़ा खूबसूरत दृश्य था। आप सोच करके देखिए कि इतने फुटबॉल के मैदान वहां थे चिली में। फिर ब्राजील वगैरह तो विश्व की बहुत ही अच्छी टीम फुटबॉल की रही है, ब्राजील की और अर्जेंटीना की। तो इस तथ्य का इस्तेमाल आप ये कर सकते हैं कि कैसे कोई देश अपने यहाँ के जो दूसरे क्षेत्रों में उपलब्धि पाने वाले नागरिक होते हैं उनका भी सम्मान करता है, चाहे वो साहित्य के हों, चाहे वो खिलाड़ी हों, चाहे वो संगीत के हों, किसी भी क्षेत्र के हों। और मुझे लगता है कि यही सही मायने में समावेशी दृष्टि भी है, इंक्लूसिव अप्रोच भी होनी चाहिए। दोस्त फ्रेंड्स, आइए अब मैं थोड़ा सा मुख्य विषय पर आऊँगा और आप सबसे कुछ बातें करूँ। कल आपने चैनल्स वगैरह पर देखा होगा कि संविधान दिवस के अवसर पर ज्यादा लोगों ने संविधान के उद्देशिका का पाठ किया, संविधान की उद्देशिका। हालांकि न्यूज चैनल्स में भी संविधान की प्रस्तावना शब्द ही इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन सही मायने में ये उद्देशिका है। और वैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताना चाहूंगा कि संविधान की उद्देशिका को लेकर के 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, मेंस की मैं बात कर रहा हूं। प्री में तो आप देखेंगे कि हर साल एक नए क्वेश्चन आ ही जाता है। आइए पहले उस प्रश्न को देख लेते हैं कि किस तरीके का प्रश्न पूछा गया था। फ्रेंड्स, मैं बार बार आप सबसे यह अनुरोध करता हूं कि प्लीज आपके स्टडी टेबल पर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर होने चाहिए, प्री के भी और मेंस के भी, एटलीस्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स तो होने चाहिए। और लगातार जब भी आप किसी टॉपिक पर तैयारी करें, बेहतर होगा कि एक बार उस क्वेश्चन पेपर को उलट लें और देखें कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपको कितनी बड़ी अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी। हालांकि मैं जानता हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट यही सोचेंगे कि यार कौन फिर क्वेश्चन को ढूंढने में इतना टाइम लगाए, लेकिन लगाना चाहिए क्योंकि ये वर्थ है, इसका महत्व है। अब आप देखिए कि उद्देशिका पर क्या पूछा गया है। प्रश्न है उद्देशिका, ब्रैकेट में है प्रस्तावना। देखिए यहां प्रस्तावना लिखा है लेकिन ब्रैकेट में लिखा है, लेकिन मूल शब्द क्या है? उद्देशिका। उद्देशिका में शब्द गणराज्य, गणराज्य सिंगल इन्वर्टेड में है। उद्देशिका में शब्द गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए। क्या वर्तमान परिस्थितियों में वे प्रतिरक्षणीय हैं? इंग्लिश में है डिस्कस इच एग्जेक्टिव अटैच्ड टू द वर्ड प्रियम, वर्ड रिपब्लिक इन द प्रियम्बल। यहां प्रियम्बल शब्द का यूज है। डिस्कस इच एग्जेक्टिव अटैच्ड टू द वर्ड रिपब्लिक, रिपब्लिक भी सिंगल इन्वर्टेड में है, इन द प्रियम्बल ये भी सिंगल इन्वर्टेड में है। आर दे डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस? 12.5 अंकों का यह प्रश्न है। अब आप देखिए कि इसमें कहा क्या गया है, आप इसे कैसे हैंडल करेंगे। पहली बात तो यह है कि इसे आप तभी हैंडल कर सकेंगे जब आपको यह उद्देशिका पूरा याद हो, क्योंकि उन्होंने कहा है ना कि गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि विशेषण किस चिड़िया का नाम है। जैसे आप जब गाय कहते हैं तो वो एक नाउन है, गाय है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन आप कहते हैं काली गाय, तो गाय की विशेषता बता रहे कि नहीं वो काली रंग की है। दूध एक वस्तु है, ठीक है, लेकिन अगर आप कहते हैं मीठा दूध तो दूध की विशेषता बता रहे कि नहीं ये दूध मीठा है, यानी कि यह विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण। तो हमने जो गणराज्य शब्द का प्रयोग किया है प्रियम्बल में, तो इसके लिए एडजेक्टिव क्या उपयोग में लाए गए हैं, मैं थोड़ा सा शुरू का पढ़ करके बता रहा हूं। बहुत ज्यादा वक्त नहीं है कि इसके ऊपर मैं विस्तार से बता सकूं, लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस के लेक्चर हैं उसमें मैंने बहुत डिटेल में इस प्रियम्बल के बारे में समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से ये जो हमारा प्रियम्बल है संविधान की आत्मा है, पूरे के पूरे संविधान की धुरी है, और जो संविधान का निर्माण किया गया है इसी के ऊपर किया गया है, नींव है हमारे संविधान की। अब देखिए कि गणराज्य से संबंध क्या है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत को एक, अब आप देखिए क्या दिया है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहला एडजेक्टिव, समाजवादी दूसरा एडजेक्टिव, पंथ निरपेक्ष तीसरा एडजेक्टिव, लोकतंत्रात्मक चौथा एडजेक्टिव गणराज्य। ये पूरा ये जो शब्दावली आई है ये 76 में जो संविधान में 42वां संशोधन किया गया था उस समय आया है, और उस समय प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर ये पूरा का पूरा फ्रेज आया है। अब आप देख रहे हैं जब तक आपको ये वाक्य पूरा याद नहीं होगा तब तक आप कैसे विशेषण समझ पाएंगे। तो हम गणराज्य तो बना रहे हैं लेकिन वो गणराज्य किस तरीके का होगा? प्रभुत्व संपन्न होगा यानी कि सॉवरेन होगा, समाजवादी होगा यानी कि सोशलिस्ट होगा, पंथ निरपेक्ष होगा यानी कि सेकुलर होगा, और डेमोक्रेटिक होगा। ये चारों शब्द हैं और इन चारों शब्दों की आपको चर्चा करनी है, और फिर आपको ये बताना है कि जो वर्तमान परिस्थिति है क्या हम इन्हें इनकी रक्षा कर पा रहे हैं। ये एक विश्लेषणात्मक हो गया 12.5 नंबर। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा करके तार्किक रूप से इसे लिखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि 12.5 में से आपको 7-8 नंबर से कम मिलेंगे। तो दोस्तों ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की एक चुनौती होती है इसकी तैयारी करने की। अगर आप सोचेंगे कि स्ट्रेट तरीके से आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर लेंगे, मुझे नहीं लगता है कि आप सही सोच रहे हैं। हो सकता है कि मेरी बात आपको गलत लगे, लेकिन दोस्तों मुझे जो सही लगता है, मैं समझता हूं कि मुझे अपने स्टूडेंट्स तक अपनी बात पहुंचानी ही चाहिए। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं अमृत नारायण सतपति, उमेश कुमार सैनी, सेजुल विंझुड़ा राजकोट गुजरात से, साहिल प्रताप और हिमांशु वाणी। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों अब 3 दिनों के बाद आप सबसे मुलाकात होगी। आप सब अपना अपना ख्याल रखें, मास्क का उपयोग करें, संभवतः जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाए रखें, हेल्थ का ध्यान रखें। मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें, मेरा अभिवादन भी स्वीकार करें। मुझे इजाजत दें। नमस्कार।